ये आकाशवाणी दिल्ली है। नई दिल्ली स्थित संविधान सदन में 1 अप्रैल से 3 दिवसीय विकसित भारत युवा संसद 2025 शुरू होगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वायु प्रदूषण कम होने के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रेप के चरण 1 के तहत लागू सभी प्रतिबंध हटाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्लीवासियों को चैत्र नवरात्रि, हिंदू नववर्ष, गुड़ी पड़वा, उगादी, चेती चंद, नवरेह और साजिबू चेरा ओबा त्योहारों की शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईद उल फित्र की पूर्व संध्या पर सभी नागरिकों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। नई दिल्ली स्थित संविधान सदन में 1 अप्रैल से 3 दिवसीय विकसित भारत युवा संसद 2025 शुरू होगा। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया के नेतृत्व में इसका आयोजन होगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये आयोजन पारंपरिक युवा संसद का नया रूप है, जो युवाओं को राजनीति और सार्वजनिक नीति से जोड़ने तथा शासन और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए एक शक्तिशाली मंच के रूप में कार्य करता है।
युवा संसद के राष्ट्रीय दौर में प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से शीर्ष 3 अभ्यर्थियों और कुल 108 युवाओं को भाग लेने के लिए चुना गया है। प्रतिभागी उच्च स्तरीय चर्चाओं और गतिविधियों में भाग लेंगे। प्रश्नकाल के विषय एक राष्ट्र एक चुनाव और विकसित भारत पर केंद्रित होंगे, जो एक प्रस्ताव के साथ समाप्त होगा। इसके अतिरिक्त एक वरिष्ठ सांसद द्वारा संचालित मास्टर क्लास का आयोजन होगा, जिसके द्वारा इन युवाओं को आवश्यक भाषण कला और नेतृत्व कौशल में समर्थ बनाया जाएगा। वहीं संसदीय अनुभव और शासन व्यवस्था को प्रत्यक्ष रूप से समझने के लिए प्रतिभागी लोकसभा और राज्यसभा के सत्रों में भाग लेंगे। प्रतिभागी इस दौरान प्रधानमंत्री संग्रहालय का भी दौरा करेंगे। अंत में पुरस्कार समारोह का आयोजन होगा, जिसमें विकसित भारत युवा संसद पुरस्कार और राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। यह चर्चाएं पूरे देश में युवाओं के नेतृत्व वाले नीतिगत भागीदारी और राष्ट्रीय प्रगति के एक नए युग का मार्ग प्रशस्त करेगी। प्रादेशिक समाचार के लिए आदर्श।
आदिवासी छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी अपना 7वां स्थापना दिवस मंगलवार को दिल्ली के आकाशवाणी भवन में मनाएगी। इस कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि आदिवासी मामलों के मंत्री जुएल ओराम हैं। वहीं आदिवासी मामलों के राज्य मंत्री दुर्गादास उइके इस आयोजन में अतिथि सज्जन के रूप में शिरोमणि होंगे। इस अवसर पर सुबह के सत्र में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के 12 छात्रों को सम्मानित किया जाएगा, जबकि खेल प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को संध्या कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा। आदिवासी छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी आदिवासी मामलों के मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन है, जो एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की स्थापना और प्रबंधन करता है, ताकि आदिवासी छात्रों को कक्षा 6 से 12 तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा कि वस्त्र अपशिष्ट यानी टेक्सटाइल वेस्ट की चुनौती पूरी दुनिया के लिए नई चिंता की एक बड़ी वजह बन गया है। उन्होंने कहा कि 1% से भी कम टेक्सटाइल वेस्ट को नए कपड़ों में रिसाइकल किया जा सकता है।
भारत दुनिया का तीसरा ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा टेक्सटाइल वेस्ट निकलता है, लेकिन मुझे खुशी है कि हमारे देश में इस चुनौती से निपटने के लिए कई सराहनीय प्रयास किए जा रहे हैं। कई भारतीय स्टार्टअप्स ने टेक्सटाइल रिकवरी फैसिलिटीज पर काम शुरू किया है। वे पुराने कपड़ों और जूते चप्पलों को रिसाइकल कर जरूरतमंदों तक पहुंचाते हैं। कुछ संस्थाएं पुराने कपड़े लेकर उसे दोबारा उपयोग करने लायक बनाती हैं और गरीबों तक पहुंचाती हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि गर्मी के आते ही शहर शहर गांव गांव पानी बचाने की तैयारी शुरू हो जाती है। श्री मोदी ने कहा कि जल शक्ति मंत्रालय और कई अलग अलग स्वयंसेवी संस्थाएं इस दिशा में काम कर रही हैं।
जल संरक्षण से ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिए जल संचय जन भागीदारी अभियान भी चलाया जा रहा है। प्रयास यही है कि जो प्राकृतिक संसाधन हमें मिले हैं, उसे हमें अगली पीढ़ी तक सही सलामत पहुंचाना है। साथियों, बारिश की बूंदों को संरक्षित करके हम बहुत सारा पानी बर्बाद होने से बचा सकते हैं।
प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों को ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान सकारात्मक कार्य करने की सलाह दी। प्रधानमंत्री ने युवाओं के लिए माई भारत नामक खास कैलेंडर की चर्चा की, जिसे इस वर्ष की गर्मियों की छुट्टी के लिए तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री ने हाल ही में संपन्न खेलो इंडिया पैरा गेम्स में खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की। उन्होंने कहा कि इन खेलों में इस बार पहले से ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इससे पता चलता है कि पैरा स्पोर्ट्स लोकप्रिय हो रहे हैं।
मैं खेलो इंडिया पैरा गेम्स में हिस्सा लेने वाले सभी खिलाड़ियों को उनके शानदार प्रयासों के लिए बधाई देता हूं। हरियाणा, तमिलनाडु और यूपी के खिलाड़ियों को पहला, दूसरा और तीसरा स्थान हासिल करने के लिए शुभकामनाएं देता हूं। इन खेलों के दौरान हमारे दिव्यांग खिलाड़ियों ने 18 राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाए, जिनमें से 12 तो हमारी महिला खिलाड़ियों के नाम रहे।
उड़ीसा दिवस समारोह 2025 पहली अप्रैल को नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित होगा। ये दिवस राज्य के स्थापना और राज्य के निर्माण में योगदान देने वाले लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जा रहा है। इसका विषय कला, संस्कृति, विरासत और पर्यटन है। उड़ीसा सरकार के प्रधान स्थानिक आयुक्त विशाल गगन ने नई दिल्ली में बताया कि इस आयोजन में राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और परंपराओं का प्रदर्शन होगा। उन्होंने कहा कि 2000 से अधिक लोग कार्यक्रम में भाग लेंगे। श्री गगन ने कहा कि केंद्रीय मंत्री, उड़ीसा और दिल्ली के मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि उड़ीसा की सर्वश्रेष्ठ विशेषताएं प्रदर्शित करने के लिए विशिष्ट हस्तशिल्प, हाथ से बुने कपड़े, महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल और पारंपरिक व्यंजनों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। राजधानी में अवैध प्रवासन की कार्रवाई में दिल्ली पुलिस ने शहर में अवैध रूप से रह रहे दो बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि ये प्रवासी भारत बांग्लादेश सीमा के पास नदी के रास्ते अवैध रूप से देश में घुसे थे और पहचान से बचने के लिए विभिन्न स्थानों पर रह रहे थे। इस मामले में निर्वासन प्रक्रिया विदेशी पंजीकरण कार्यालय FRRO की दिल्ली शाखा की सहायता से शुरू हो गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वायु प्रदूषण कम होने के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रेप के चरण एक के तहत लागू सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार कल दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 153 दर्ज किया गया, जो मध्यम श्रेणी में आता है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने बताया कि हाल के दिनों में अनुकूल मौसमी परिस्थितियों और तेज सतही हवा के कारण वायु गुणवत्ता सूचकांक में काफी सुधार हुआ है। आने वाले दिनों में ये मध्यम श्रेणी में बना रहने की संभावना है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज दिल्ली में पर्यावरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल हुए। श्री धनखड़ ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि वैश्विक पर्यावरण की चुनौतियों से निपटने के लिए सीमा पार सहयोग और नवाचारी नीतियों की आवश्यकता है, जो एक साथ पारिस्थितिकी संसाधनों के संरक्षण और आर्थिक विकास को आगे बढ़ा सके। उन्होंने नागरिकों से पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया।
Global environmental challenges necessitate cross-border cooperation and innovative strategies that simultaneously advance ecological sustainability and economic development. No individual, no group, no nation can by itself resolve this issue. It has to be done by one and all on the planet.
आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे पोषण अभियान के माध्यम से कुपोषण का निवारण विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के बाल चिकित्सा सर्जरी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ अजय वर्मा और एम्स आहार विशेषज्ञ डॉ ऋचा जायसवाल परिचर्चा में भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विशेषज्ञों से कुपोषण की पहचान कैसे करें, समय पर कैसे निदान करें तथा गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और बच्चों के बीच पोषण संतुलन कैसे बनाए जैसे विषयों पर सवाल पूछ सकते हैं। टेलीफोन नंबर 011-23-42-1050 और 011-2331-444 पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त व्हाट्सएप से 9289 40444 नंबर पर भी प्रश्न भेजे जा सकते हैं या #AskAIR के साथ एक्स पर सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं। भारत की विमान सेवा कंपनी इंडिगो ने तिरुचिरापल्ली और जाफना के बीच सीधी उड़ान सेवाएं शुरू की हैं। चेन्नई से जाफना के लिए पहले से ही दैनिक उड़ान सेवा उपलब्ध थी। इंडिगो सप्ताह में 6 दिन ये उड़ानें संचालित करेगी, जो तिरुचिरापल्ली से दोपहर 1:25 पर प्रस्थान करेगी और 2:25 पर जाफना पहुंचेगी। जाफना से वापसी की उड़ान दोपहर 3:10 पर प्रस्थान करेगी और 4:05 पर तिरुचिरापल्ली पहुंचेगी। इन सेवाओं से भारत और श्रीलंका के बीच यात्रा और व्यापार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने युगादि, गुड़ी पड़वा, चेती चांद, चैत्र शुक्लादि, नवरेह, चैत्र नवरात्र और सजीबू नोंगमा, चिरोबा और बिहू के अवसर पर लोगों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि वसंत ऋतु के आगमन पर मनाए जाने वाले ये त्यौहार भारतीय नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ये त्यौहार हमारी सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करते हैं और सामाजिक एकता को बढ़ावा देते हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत में अलग अलग नामों से ज्ञात ये पर्व पारंपरिक नववर्ष की शुरुआत है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि ये न केवल नवीनता, समृद्धि और आशा के प्रतीक हैं, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति माता से भी जोड़ते हैं। उपराज्यपाल श्री सक्सेना ने सोशल मीडिया के माध्यम से कहा है कि लोगों के जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता की गुड़ी सदैव ऊंची लहराए। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने चैत्र नवरात्र के पहले दिन छतरपुर मंदिर में कन्या पूजन और पूजा अर्चन की। इस अवसर पर श्रीमती रेखा गुप्ता ने समस्त दिल्लीवासियों की खुशहाली की प्रार्थना की और कहा कि ये नववर्ष ढेर सारी खुशियां लाए। उन्होंने कहा कि माँ के आशीर्वाद से सभी के जीवन में अपार खुशियां, समृद्धि व शांति आए।
छतरपुर मंदिर माँ कात्यायनी के इस सिद्ध पीठ पर पहुँच करके माँ के चरणों में माथा टेक करके मैंने यही प्रार्थना की है कि सभी दिल्ली वासियों के लिए यह नववर्ष संवत बहुत ढेर सारी खुशियां लेकर के आए। नवरात्रों के ये त्योहार उनके जीवन में सुख समृद्धि लेकर के आए।
मुख्यमंत्री ने लोगों को गुड़ी पड़वा की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने आशा जताई कि ये शुभ पर्व नए उत्साह, समृद्धि और खुशियों का संदेश लेकर आए। चैत्र नवरात्रि का पहला दिन आज दिल्ली समेत पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी दिन से हिंदू नववर्ष की भी शुरुआत होती है। झंडे वालान, छतरपुर और कालकाजी समेत राजधानी के विभिन्न मंदिरों में आज श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई और इसके साथ ही सुबह पावन आरती भी की गई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईद उल फितर की पूर्व संध्या पर सभी नागरिकों और विशेष रूप से देश और विदेश में रहने वाले मुस्लिम समुदाय को शुभकामनाएं दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नई दिल्ली स्थित संविधान सदन में 1 अप्रैल से 3 दिवसीय विकसित भारत युवा संसद 2025 शुरू होगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वायु प्रदूषण कम होने के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रेप के चरण 1 के तहत लागू सभी प्रतिबंध हटाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्लीवासियों को चैत्र नवरात्रि, हिंदू नववर्ष, गुड़ी पड़वा, उगादि, चेती चंद, नवरेह, सजीबू, चेरा ओबा त्योहारों की शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।